Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसलिए इसके लिए सुटेबल है राजधानी, कम पैसे है तो सुपर पार्ट, और कम है तो एक्सप्रेस, और नहीं के बराबर है तो पैसेंजर पकड़ लो, चार दिन में जाओ बांद्रा है ना, बांद्रा मेल वह पकड़ लो। इसलिए एक ग्रंथ हिंदी का नाम उसका विचार सागर। विचार सागर में बड़ी दृढ़ता के साथ स्वामी निश्चल दास ने प्रतिपादन किया है कि सदगुरु को सोत्रिय होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, सोत्रिय होना ही चाहिए हर हालत में। ब्रह्मनिष्ठ हो न हो कोई आपको इससे फर्क नहीं पड़ना है, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ब्रह्मनिष्ठ है सोत्रिय नहीं है तो आप भटक सकते। इसलिए आज भी मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, आज भी जो ब्रह्मनिष्ठ पहुंचे हुए हैं ना, उनके अनुयायी हमारे ही, हम जहां से जुड़े थे ना पहले, स्वामी शिवानंद तीर्थ, उनको गीताघाट बाबा नाम से पहले कहते थे, बाद में कैलाश में आए, तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, पर उनको शास्त्रों का बिल्कुल बोध नहीं, एकदम नहीं। तो जितने भी हमारे वो पूर्व के जो थे ना गुरु भाई है, उनको दो ही काम आता है, योगा और ध्यान, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और उसमें 50-50 साल तक ध्यान करते रहे पर कुछ भी बोध नहीं, क्योंकि वो जो ब्रह्मनिष्ठ की परंपरा, वो तो तपस्या किए 24 वर्ष तक जंगल में घोर, और जन्मांतर के संस्कार थे, तपस्या से उनको स्वरूप का बोध हो गया, 24 घंटा जब देखो बैठे रहते। अब जो वो शिष्य हुए ना गीताघाट बाबा के, जिनसे पहले जुड़ा था स्वामी शिवानंद तीर्थ, तो वे भी बस उसी अनुकरण में, तो फिर क्या हुआ कि बोध न होने से सब फिसल जाते, उसी में लगे रहते। हाँ, यदि श्रोत्रिय होते तो प्रत्येक शिष्य को उपदेश करते कि भाई तुम इसके अधिकारी हो, तुम ऐसा साधन करो, तुम ऐसा साधन करो, तो पहुंच जाता। तो जो मतलब कि ब्रह्मनिष्ठ है, उनके जो अनुयायी है ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको कई तरह की बातें देखने सुनने को मिलती है। ब्रह्म का साक्षात्कार तपस्या से हो गया, घोर तपस्या किया, जन्मांतर की उपासनाएं थी, विद्याएं थी, वो तो संभव, परंतु श्रोत्रिय न होने से ना उस परंपरा में कोई अनुशासन नहीं मिलता है। अनुशासन होता है ना, जैसे ब्रह्मचार्य को संधि उपासना करना, प्रणव जप करना, वेदांत चिंतन करना, ईश्वर अनुशासन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है ना कि उसमें ज्यादा शिष्यों को भटकने का अक्सर चांस रहता। पर श्रोत्रिय सदगुरु यदि है तो श्रोत्रिय है, भले ही ब्रह्मनिष्ठ हो या ना हो, तो शिष्यों को संभाग दिखाएगा, देखो भाई तुम्हारे चित्त में यह विकार है तो यह अनुष्ठान करो, यह वासना है तो यह कर्म करो, वासना क्षीण के लिए साधन अपनाओ, और मोक्षु हो तो केवल वेदांत का चिंतन करो। इसलिए विचार सागर में दृढ़ता से स्थापित किया कि गुरु का सूत्रीय होना बहुत जरूरी है, और ब्रह्मनिष्ठ है तो भी सोने में सुहागा, बहुत उत्तम। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाए, और जा करके फिर भक्ति कैसे, तो बताया जैसे देवता परमात्मा में, वैसे ही होना चाहिए सदगुरु में। जब सदगुरु में और परमात्मा में समान भक्ति होगी, तब जाकर वही उपनिषद अर्थ प्रकाशित हो जाते। एक महात्मा ने परीक्षा के लिए, बहुत सारे शिष्य थे 50-60, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो सामने लोटा है ना, ये सोने का है, जाओ बाजार में बेच कर आओ। सबने कहा कि लगता है गुरु जी कि वृद्धावस्था से कुछ जो है भ्रम हो गया। तो बहुत सारे ने कहा नहीं गुरु जी ये पीतल है, सोना नहीं। कुछ लोगों को बोला, उन्होंने बोला गुरु जी कह रहे तो भाई कुछ होना चाहिए, दिखता तो पीतल ही है, परंतु अब गुरु जी कह रहे सोना तो मानना पड़ेगा। आधे तो सीधा इनकार कर दिए, नहीं पीतल ही है। उसमें से एक बड़ा श्रद्धा भक्ति वाला था। गुरु जी ने कहा कि बता, सही तू बता, ये सोने का है कि पीतल का? हम तो सोना का मान रहे। बोला गुरु जी आप जाओ जो बोले बिल्कुल सही, सोना ही है। बोले ठीक है, सोना है तो सोनार की दुकान पर ले जा और बेच करके आ। श्रद्धा भक्ति थी। सबने कहा कि गुरु जी भी ऐसे ही, ये चेला भी ऐसे, ये कहीं पीतल सोना हो सकता है? ले गया, श्रद्धा थी। सुनार के दुकान पर ले गया, श्रद्धा भक्ति से सोना हो गया, सोने का दाम मिला। देखो परीक्षा लेने के तरीके होते ना, सारे शिष्य बाद में पश्चाताप किए, हमने बड़ी गलती की। तो जब सदगुरु में भक्ति होगी तो आप विचार नहीं करते, श्रद्धा भक्ति होने पर जो कह दिया उसको मान लिया, इसमें सफलता मिलती भी है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, छोटा सा, करीब 90 के आसपास की होगी। परम पूज्य मुरारी बापू गांव में कथा हुई थी, महुआ गांव था ना, तो कैलाश से सारे महात्मा गए थे, मैं भी गया, बस में हम लोग गए, महाराज जी टैक्सी में गए, ऋषि कृषि सब गए। तो वहां जाने के बाद द्वारिका नाथ का दर्शन करने हम गए, तो हमारे मन में बड़ी अच्छी भावना थी, उम्र भी छोटी थी और उस समय भगवान का अनन्य भक्ति करता था, आजकल तो भगवान शंकर की करता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण का घर से भक्ति करता था। तो बस में मेरे मन में कल्पना चलता था 24 घंटा कि भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, विराट उनके हाथ होंगे, विराट रूप होगा और अर्जुन होगा, ऐसी कल्पना ऊहा को। पर हम लोग 50-60 महात्मा थे, तो मंदिर के मुख्य जगह बिल्कुल गर्भगृह में हम लोग गए, इतना फासला होगा, मतलब 4-5 फुट की फासला होगा, पर 4-5 फुट की फासला में भी हमको भगवान विराट रूप ही दिखाई पड़े, चतुर्भुज नहीं दिखाई पड़े। और 2 दिन के बाद जब आने लगे ना, तो वह भाई अब क्या पता कब दर्शन का, चलो करके आते हैं, तो बस वाले को रुकवा के गए, अब बहुत दूर से दर्शन किए, तो चतुर्भुज हमने किए, क्या चक्कर है? उस दिन देखा विराट थे, सामने से देखा अभी और नजदीक गया, तो हमको कहा कि तुम्हें भ्रांति थी उस दिन। तो श्रद्धा भक्ति होने से ना, जैसी भावना होती वैसा रूप दिखाई पड़ता है, तो चीज वही होती है, पर श्रद्धा भक्ति से उस प्रकर्ष, श्रद्धा भक्ति के प्रकर्ष से उसमें अचिंत्य दिव्यता आ जाती है। तो श्रद्धा भक्ति हो तो चाहे सद्गुरु में सद्गुरुत्व न भी हो तो भी आपको उसे कल्याण मंगल होता ही है। जैसे पीतल सोना हो गया ना, ऐसे ही एक जो है ना, है हाँ, एकलव्य की भी देखो दृष्टांत है महाभारत में, एकलव्य कितनी श्रद्धा कि उस पार्थिव मिट्टी से सारी विद्या सीख ली, वह मिट्टी नहीं समझता था कि साक्षात सदगुरु बैठे हैं, ऐसा समझ करके उस पार्थिव द्रोणाचार्य से सारी विद्या प्राप्त कर ली जो अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ। तो एकलव्य के श्रद्धा भक्ति की महिमा है। एक भक्त था, कहते घर छोड़कर जंगल गया, उसके मन में था कि बस भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए। उधर से एक ठग निकला, देखा बहुत उसके हाथ में घड़ी है, सामान है, साजोबा, ने पूछा तुझा क्यों बैठा भाई? उसने कहा मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, आप करा सको तो बताओ। बोले हाँ तुझे बस मिनटों में करा दूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं, पता नहीं कैसे बोलते। दिल्ली में एक हमारी महात्मा सुबोधान जी पढ़ाए हुए, हमने कहा कि दिल्ली में 2-4 बार मैं गया, एक भी भगत नहीं बने, तू पहली बार गया इतना कैसे भगत? बोला महाराज मैं सीधा बोलता हूँ, आओ मेरे पास भगवान का दर्शन करा दूंगा 1 महीने में। हमने कहा हद हो गई, मतलब तुमने तो किया नहीं। बोले मैंने नहीं किया, आए तो पहले, और बहुत सारे आ जाते हैं, सच्ची घटना कह रहा हूं। इस लोभ में हमारे पास एक भी नहीं आए, उस सुबोधान जी के बाद बहुत आ गया। हाँ महाराज बताइए 1 महीने में कैसे होगा? बोले मैं कराऊंगा ना, ऐसा करना वैसा करना, बहुत भगत बना ली। बोले आओ आश्रम में ऐसा अनुष्ठान करें करना, मैं तुमको शक्तिपात करूंगा, कमरे बंद करा करके। बोले पहले आ जाए पास में, महीना दो महीना करेगा फिर बोलेंगे देख तेरे जन्मांतर कितने पाप हैं, और 6 महीना लगेंगे, फिर बोलेंगे 6 वर्ष लगेंगे। तो देखो ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे गुरु जी मिल गए, बोले बस तुझे 24 घंटा में दर्शन हो जाएगा। अब जो है उसको कहा आंख नाक कान बंद कर, परीक्षा जब तक नहीं बोलू आंख नहीं खोलना। अब बेचारा वो बेटा नंगोटी पहन के सुमान उमान सब निकाल के गुरु जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर शर्त रख दिया आंख नहीं खोलना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं खोलने का, बीच में खोला तो दर्शन ही होगा। अब बेचारा श्रद्धा था भक्ति था, गुरु जी ने कहा, अब जंगल में बैठ गया आंख बंद करके, उधर सब सामान लेकर वो चले गए। हाँ नारद जी ने देखा कि भाई ये तो आंख नहीं खोल रहा, भगवान के पास गए, भगवान को लेकर आए, भगवान सामने आ गए। नारद जी ने कहा देख भगवान जिनकी तू तत्परता से उपासना कर रहा नाम जप कर रहा, उस भगत ने कहा भगवान इसमें प्रमाण क्या, जब गुरु जी कहेंगे तब मैं आंख खोलूंगा। नारद जी ने कहा तेरे गुरु जी ऐसे थे ठग थे, तेरे सब सामान लेके चले गए। बोले ऐसा नहीं बोलो, गुरु जी ने कहा है कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आंख नहीं खोलना। अब नारद जी ने कहा बड़ा मुश्किल हो गया, उसने कहा यहां खोल भी दिया तो मैं तो पहचान नहीं सकता, गुरु जी को पहचाने भगवान कैसे होते। नारद जी ने कहा कि मैं बता रहा हूं। बोले आपके बताने से क्या होगा। अब नारद जी को गुरु जी को ढूंढना पड़ा, वहां से बड़ा समझा बुझा कर लाए कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। आए बोले देख भगवान आए आंख खोल, तब खोला। तू शिष्य के श्रद्धा भक्ति से गुरु जी को भी दर्शन हो गया। तो देखो नारायण श्रद्धा भक्ति हो ना तो कहीं पर भी आप चेतन की अभिव्यक्ति कर सकते, पर हम लोग क्या सोचते हैं बार बार कि सदगुरु पहुंचा हुआ होना चाहिए। ऐसे कई बार होता है, गंगोत्री हम लोग एक बार वेदांत विचार कर रहे थे 93 की बात है, वही सबने प्रस्थानांतरी पढ़ाना शुरू किया 93 में ईसावासम गुजराती आश्रम में। तो बंबई से बहुत भगत गए और हमसे पूछ रहे महाराज कोई बताओ सिद्ध महात्मा है तो गंगोत्री में जो हाथ रख दे और सीधा भगवान का दर्शन हो जाए। मैंने बहुत समझाया पर बात समझ में नहीं आई। वहां एक अच्छे महात्मा, अब तो शरीर छूट गया, दिनेशान जी अवधूत रहते थे, बड़े शुद्ध हृदय के महात्मा, उन्होंने स्वयं अपना अनुभव बताया कि महाराज कुछ भी नहीं है कपड़ा वपड़ा उतारने में, ये तो अब लोक प्रसिद्धि हो गई, इसलिए मजबूरी में मुझे अवधूत रूप में रहना पड़ता है, इससे कोई अध्यात्म से संबंध नहीं। अपना अनुभव बताया, बहुत दिन तक अवधूत में रहते थे, कोई कपड़ा एक भी नहीं। दिनेशानंद जी अवधूत, गंगा जो गंगा जी का मंदिर गंगोत्री में ना, उसके 1 किलोमीटर आगे बाएं तरफ गुफा है, बड़े अच्छे तपस्वी महात्मा, वेदांत विचार करते थे, समझाते थे। तो हमने कहा कि वहां चले जाओ, और कई लोग भी बताए। अब वहां गए तो उन्होंने भी वही वेदांत का बात जो चर्चा बताई, बोली ये ऐसे ही है, पहुंचे हुए नहीं। तो भक्त लोग क्या सोचते कोई ऐसा सिद्ध मिल जाए सीधा हाथ रख दे, जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को हाथ रखा, सीधा समाधि लग जाए। तो नारायण ऐसा संभव नहीं, जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक चाहे कितना भी उपदेश करे कोई उस तत्व का अवतरण नहीं होता, व्यक्ति नहीं होती। तो ये जो वेदांत का उपदेश है ये तभी हमारे हृदय में अभिव्यक्त होता है, प्रकाशित होता है, जब हमारे चित्त में शुद्ध श्रद्धा और भक्ति हो। श्रद्धा भक्ति हो तो तत्काल साक्षात्कार हो जाता है। और यदि कोई जंगल में ऐसा मिल जाए ना बबूत मान्य बबूत दे दे, और ऐसा होता भी है, कई हमारे परिचित है ना पुराने बहुत बुजुर्ग लोग, उनसे पूछा मैं तरकीब कि कैसे आप करते, बोले देख 100 आदमी को बबूत हमने दिया 100 में से 10 का काम तो होगा कम से कम, तो 10 की श्रद्धा होगी, 90 की नहीं हुई, नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो क्या उत्तर देना है कि तेरा प्रारब्ध ठीक नहीं, तूने हमारी बात ठीक से मानी नहीं, तूने उपासना नहीं की, उपासना मन इधर उधर भागता होगा। ये तो जो है ना तुक्का का खेल है, पर वेदांत में तुक्का नहीं है, यहां तो सीधा आपको अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तो जितनी श्रद्धा भक्ति भगवान में है, आप भगवान के विषय में संशय नहीं करते, हालांकि भगवान को आपने कभी देखा नहीं, खाली सुन रहे हैं, पर सुन करके भी अचल श्रद्धा है। तो जैसे परमात्मा में श्रद्धा, वैसे सद्गुरु में श्रद्धा हो तो सारे उपनिषद के अर्थ प्रकाशित हो जाते। भाष्य देख लीजिए, यस्य पुरुषस्य अधिकारिणो देवे यता प्रबंधेन दर्शित अखंडैक रसे सच्चिदानंद पर ज्योति स्वरूपिणे परमेश्वरे परोत्कृष्टा निरूपचरिता भक्ति। जिस पुरुष की जो अधिकारी है देवता में यत्ता प्रबंधेन, मतलब बहुत अधिक जैसा बताया ग्रंथ में वैसा अखंडैक रस परमात्मा में सच्चिदानंद जो परम ज्योति स्वरूप है, परमेश्वर में परोत्कृष्टा कार्य निश्चल, निरूपचरित मतलब औपचारिक नहीं, एक तो होता औपचारिक, औपचारिक मतलब कृत्रिम, कृत्रिम नहीं बल्कि वास्तविक श्रद्धा है, बनावटी श्रद्धा नहीं है। एतत् उपलक्षणम्, ऐसे ही सद्गुरु में हो अचांचल्यम श्रद्धा चौभे यथा तथा ब्रह्मा विद्योपतिष्ठति गुरुपि तदुभयम यस्य वर्तते तस्य तप शीर्षो जल राशि अन्वेषणम विहाय यथा साधनांतरम नास्ति तथा यथा च भुक्षितस्य भोजनात् अन्यत्र साधनांतरम न एवं गुरु कृपा विहाय ब्रह्म विद्या दुर्लभा। इस प्रकार से श्रद्धा होना चाहिए। अचांचल्यम कार करते चंचलता रहित, इस श्रद्धा में चंचलता आ गई तो श्रद्धा बदलती रहती। कभी श्रद्धा किया भगवान शंकर में तो वहां नहीं मिली बात कुछ, तो कृष्ण में वहां नहीं कुछ उपलब्ध हुआ तो काली में, वहां नहीं हुआ तो हनुमान जी में, ये बोलता है चांचल्य। श्रद्धा का विशेषण है अचांचल्य, चंचल श्रद्धा नहीं होना चाहिए, स्थायी श्रद्धा होना चाहिए। तो अचांचल्य मतलब कि टिकाऊ स्थायी श्रद्धा। श्रद्धा वहां होती है जहां पर की महत्व बुद्धि होती है, जहां महत्व होता ना वहां श्रद्धा हम करते, और भक्ति वहां पर होती है जिसमें हमारी प्रियता होती है। भाष्यकार ने पीछे लिखा कि राजानम उपासते गुरु उपासते, कुछ लोग मतलब राजा की भक्ति करते पैसा के लिए, सेठ की भक्ति करते ताकि धन मिलेगा, और यहां जो साधक है वह महत्व बुद्धि भी परमात्मा में है और भक्ति भी परमात्मा में ही है। तो श्रद्धा भक्ति कैसी हो तो अचांचल्य मतलब चंचल न हो, बदलने वाली न हो, उभे दोनों में ब्रह्म विद्योपदिष्टि गुरुपि ब्रह्म विद्या को उपदेश करने वाले गुरु में तद उभयम, उभयम कार्ते श्रद्धा भक्ति यश वर्तते जिसका है तस्य तप्त शीर्षो जल राशि अन्वेषण विहाय। जैसे कि कोई व्यक्ति गर्मी से बहुत तपा हुआ हो, प्यासा हो, उसके लिए जल को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं, पहले कहता जल लाओ भोजन बाद में करेंगे। अच्छा दूसरा दृष्टांत दिया कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखी तो भूखा प्यासा हो, उसके लिए भोजन को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं अपनाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या चाहता है वह गुरु कृपा को छोड़कर ब्रह्म विद्या दुर्लभ है। त्वरान्वितस्य, त्वरा बोलते जल्दी, भूखा प्यासा जल्दी से जल्दी जल चाहता है, भोजन चाहता। ऐसे ही जो संसार से पीड़ित है वह सद्गुरु की शरण में जाता है। मुख्य अधिकारिणो महात्मना उत्तमस्येति कथिता, उत्तम अधिकारी की पहचान है, उसमें तत्परता होती है कि जैसे भी वो जल्दी सदगुरु मिले और ब्रह्म विद्या को उपलब्ध करके मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। उत्तम अधिकारी का लक्षण है त्वरिता। त्वरिता मतलब कि जिसको आप तड़पड़ाहट बोल दी, छटपटाहट, जल्दी से हमारी मुक्ति होनी चाहिए। अस्याम श्वेता चतुरोपनिषदि श्वेता स्वतरेण महात्मना कविना उपदिष्टा अर्था प्रकाशन्ति स्वानुभवा भवन्ति। श्वेता स्वतर उपनिषद में श्वेता स्वतर नामक महात्मा कवि के द्वारा उपदिष्ट जो पदार्थ में प्रकाशित हो जाते हैं, मतलब अनुभव में उतर आते हैं। द्विर्वचनम मुख्य शिष्य तत्साधनादि दुर्लभत्व प्रदर्शनार्थ अध्याय परिसमाप्ति अर्थम आदरार्थं च। जो द्विवचन मतलब दो बार कहा ना प्रकाशन्ते महात्मना, इसका अर्थ है मुख्य शिष्य के साधनादि दुर्लभता को दिखलाने के लिए या अध्याय समाप्ति के लिए अथवा आदर के लिए। तीन अर्थ किया, आदरार्थ, अध्याय समाप्ति अर्थ अथवा मुख्य शिष्य के साधनादि दुर्लभता को दिखलाने के लिए। ये दो बार जो कहा प्रकाशन्ते महात्मनः। अब आपके मन में दुर्लभ कैवल्य की जिज्ञासा होगी कि हम लोग भी स्वाध्याय प्रवचन सुनते सुनते बहुत दिन बीत गया, अब जल्दी से मुझे कैवल्य मोक्ष की उपलब्धि हो, तो उसी कैवल्य को बहुत ही थोड़े दिन में जल्दी से जल्दी आप जैसे प्राप्त कर सकें, उसके लिए कल से कैवल्योपनिषद का हम लोग स्वाध्याय करेंगे। और बहुत आराम से, जैसे कि आप बहुत ज्यादा भूखे होते प्यासे होते हैं तो कई बार हम लोग हाथ पैर भी नहीं धोते हैं, होता है कि नहीं? इतने भूखे प्यासे जैसे थाली आया हाथ पैर न धोकर तुरंत ग्रहण करते हैं, और उस समय आप कुछ भी खाओ तुरंत हजम हो जाता है। ऐसे यहां पर ब्रह्मा जी आचार्य गुरु हैं, आसुलायन शिष्य हैं, बिना किसी औपचारिकता के तुरंत ब्रह्म विद्या का उपदेश यहां पर उन्होंने किया है। तो ऐसे आपको बहुत जल्दी कैवल्य उपनिषद का उपदेश सुनने को कल से मिलेगा आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।